नमस्कार भारत 17 सितंबर दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जबरदस्त भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी। हंगरी सर्बिया सीमा पर पुलिस ने प्रवासियों पर आंसू गैस के गोले दागे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने चिंता जताई।
I was shocked to see how these refugees and migrants were treated.
नेपाल में नए संविधान के मसौदे पर सहमति, लेकिन आबादी के एक बड़े हिस्से में है निराशा।
आधी जनसंख्या खुश है कि संविधान बना और आधी जनसंख्या मातम बना रही है कि ऐसा संविधान बना जो कि विभेद को संस्थागत करता है।
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर डाक टिकट बंद करने के फैसले पर राजनीतिक विवाद। होंगी खेल की खबरें और समाचार पत्रों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। सर्बिया से हंगरी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे प्रवासियों पर हंगरी की पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ी हैं। कुछ प्रवासी कंटीली तारों को लांघकर हंगरी में घुसने में कामयाब रहे। सर्बिया और संयुक्त राष्ट्र ने प्रवासियों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें इस्तेमाल करने के लिए हंगरी की तीखी आलोचना की है। सर्बिया के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुचिच ने हंगरी पर बर्बर और गैर यूरोपीय रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि उन्हें प्रवासियों के साथ हुए बर्ताव को देखकर धक्का लगा है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस 14 वर्षीय मुस्लिम छात्र को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है जिसे स्कूल में डिजिटल अलार्म घड़ी ले जाने पर बम लाने का शक होने की वजह से हिरासत में ले लिया गया था। अहमद मोहम्मद नाम के इस छात्र को फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी फेसबुक के दफ्तर आने का न्योता दिया है। दुनिया भर में लोग इस छात्र के समर्थन में सामने आए हैं। हिरासत में लिए जाने का अपना अनुभव बताते हुए छात्र अहमद मोहम्मद ने कहा, मुझे स्कूल की प्रिंसिपल और पुलिस अधिकारी के साथ क्लास से बाहर लाया गया। वे मुझे एक कमरे में ले गए जहां 4 पुलिस वाले थे। 5 पुलिस वाले, प्रिंसिपल और मैं ही वहां थे। मेरे अभिभावक नहीं थे। मैंने अपने परिजनों को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पूछताछ के बीच में ही और किसी को फ़ोन नहीं कर सकते हो। मैं बहुत डर गया था। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि सीरिया के भीतर 20 लाख से अधिक बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं। संगठन के मुताबिक बड़ी तादाद में स्कूलों की इमारतें या तो क्षतिग्रस्त हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं। संगठन का कहना है कि देश में शिक्षा की हालत बेहद खराब है। चिली में आए 8.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद समूचे तटीय इलाके में सुनामी की चेतावनी दी गई है। भूकंप का केंद्र राजधानी सैंटियागो से 246 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। पेरू और हवाई द्वीप में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भारत का कहना है कि दिल्ली के नज़दीक अपने घर में 2 नेपाली घरेलू नौकरानियों को बंधक बनाने और बलात्कार करने के आरोपों का सामना कर रहे वरिष्ठ सऊदी राजनयिक देश छोड़ गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक सऊदी दूतावास में प्रथम सचिव माजिद हसन अशूर को राजनयिक प्रतिरक्षा प्राप्त है। 2 महिलाओं की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने अशूर पर बंधक बनाने और बलात्कार करने के आरोप लगाए हैं। सऊदी दूतावास ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मध्य पूर्व में तैनात शीर्ष अमरीकी कमांडर जनरल लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए अमरीका से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सिर्फ 4 या 5 सीरियाई विद्रोही लड़ाके ही फिलहाल लड़ रहे हैं। जनरल लॉयड ने अमरीका की एक सीनेट समिति को बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पहले 54 लड़ाकों पर अलकायदा ने हमला कर दिया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी से आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जबरदस्त भूकंप आया है जिसकी वजह से राजधानी सैंटियागो में इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। सैंटियागो से लगभग 246 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में तटीय इलाकों में भूकंप की तीव्रता 8.3 मापी गई है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने चेतावनी दी है कि भूकंप की वजह से विनाशकारी सुनामी लहरें पैदा हो सकती हैं। इस खबर पर और जानकारी जैसे ही हम तक पहुंचेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। उधर हंगरी की दंगारोधी पुलिस ने प्रवासियों को सर्बिया हंगरी सीमा से पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस और पानी की तेज बौछारों का इस्तेमाल किया है। सर्बिया के शहर हॉर्गोस के नजदीक एक क्रॉसिंग पॉइंट पर बड़ी संख्या में प्रवासी जुटे थे, जिनकी सीमा के दूसरी ओर मौजूद पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ दिलनवाज पाशा।
अफरा तफरी का यह माहौल सर्बिया और हंगरी की सीमा का है, जहां सैकड़ों प्रवासियों ने कटीली तारों को पार कर हंगरी की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। प्रवासियों को रोकने के लिए हंगरी के सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। वहीं प्रवासियों ने भी पत्थर और बोतलें फेंकी और नारेबाजी की। हालांकि हंगरी का कहना है कि उसने बल प्रयोग नहीं किया है। हंगरी सरकार के प्रवक्ता जोल्टान कोवाक्स ने मौके पर मौजूद पत्रकारों से कहा,
पुलिस नेवर यूज्ड फोर्स, दिस इज ओनली टियर गैस एंड वाटर कैनन यू विटनेस्ड, बट वी सी इंक्रीजिंग वायलेंस।
पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया है, जो आपने देखा है वो आंसू गैस और पानी की बौछारें हैं। ये लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और बच्चों का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। दो बच्चों को पुलिस पर फेंका गया, वो घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था UNHCR का कहना है कि उसने हंगरी और प्रवासियों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन हंगरी ने इनकार कर दिया। UNHCR के प्रवक्ता एर्नो साइमन ने कहा,
We have some Arabic speaker colleagues here, so we could have intervened, we could have mediated.
हमारे कुछ सहयोगी अरबी भाषी हैं, हम मध्यस्थता कर सकते थे, लेकिन हंगरी की सरकार ने हमारे ऐसे प्रस्तावों का जवाब ही नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी प्रवासी और हंगरी की पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों पर अफसोस जाहिर किया है। बान की मून ने कहा,
I was shocked to see how these refugees and migrants were treated.
प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ जैसा बर्ताव किया गया है, उसे देखकर मुझे धक्का लगा है। यह स्वीकार्य नहीं है। ये लोग युद्ध और शोषण से बचकर भाग रहे हैं। हमें अपना दयालु नेतृत्व सुनिश्चित करना चाहिए। सर्बिया के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वूचिच ने भी हंगरी की आलोचना की है। उन्होंने हंगरी पर प्रवासियों के साथ अपने बर्ताव में बर्बर होने और गैर यूरोपीय होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सर्बिया किसी को भी अपना अपमान नहीं करने देगा। उन्होंने यूरोपीय संघ से इस पर प्रतिक्रिया देने का आह्वान भी किया है। वहीं हंगरी का कहना है कि उसने यह कार्रवाई हिंसक प्रवासियों को अपने देश में आने से रोकने के लिए की है। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सियार्तो ने सर्बिया से कहा है कि वह दोनों देशों के बीच सीमा को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए। पीटर सियार्तो ने कहा कि हंगरी पुलिस का काम अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। मध्य पूर्व और अफ्रीका में जारी संघर्षों के कारण बड़ी तादाद में प्रवासी यूरोप का रुख कर रहे हैं, जिससे समूचे यूरोप में शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। जर्मनी ने प्रवासियों के प्रति स्वीकार्यता दिखाई है, जिस वजह से बड़ी तादाद में प्रवासी जर्मनी का रुख कर रहे हैं। जर्मनी पहुंचने के लिए वे सर्बिया और हंगरी से होकर गुजर रहे हैं। मंगलवार को हंगरी ने प्रवासियों के अपनी सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से हंगरी और सर्बिया की सीमा पर प्रवासी और हंगरी पुलिस के बीच तनाव है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। और अब बात अमरीका की, जहां अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष 15 उम्मीदवारों में इस वक्त डिबेट हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वॉशिंगटन, जहां बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय मौजूद हैं। ब्रजेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बताएं, इस डिबेट में कौन आगे चल रहा है और कौन पिछड़ता नजर आ रहा है?
देखें संदीप, जैसा कि आपने बताया कि 15 उम्मीदवार हैं जिन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, उनमें से जो 11 सबसे आगे हैं राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में, उनकी बहस अभी चल रही है। और बाकी जो बचे हुए हैं 4, उनको एक घंटे पहले वक्त दिया गया था, क्योंकि सीधी बात है कि इतने ज्यादा उम्मीदवार हैं कि स्टेज पे सब एक साथ आ भी नहीं सकते हैं। अब अगर देखें कि डिबेट में कौन आगे है, तो ये इसका पता डिबेट के खत्म होने के बाद चलता है, क्योंकि जनता, काफी सारे लोग एक तरह की वोटिंग करते हैं, बताते हैं कि किन के विचार उनको अच्छे लगे। लेकिन अब से कुछ ही देर हुआ इस डिबेट को शुरू हुए, लेकिन राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में सबसे आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो पेशे से बिजनेसमैन हैं, राजनीति में पहली बार कूदे हैं और जिन्होंने यहां की राजनीति की एक तरह से आप कह सकते हैं परिभाषा बदल दी है। बिल्कुल अक्खड़ भाषा का इस्तेमाल किया है, औरतों के रूप पर एक तरह से कमेंट्स किए हैं, भद्दा कहा है उन्हें। तो इस तरह की भाषा आमतौर पर राजनीतिक अमरीकी चुनाव में नहीं सुनी जाती थी, और इसलिए कई उम्मीदवार इस बार उन पर सीधा हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनको किनारे किया जा सके, लेकिन फिलहाल तो कामयाब होते हुए नहीं नजर आए हैं
जी।
अभी तक विदेश नीति पर ज्यादा बहस हुई है जिसमें रूस और चीन से ये उम्मीदवार किस तरह से बर्ताव करेंगे, क्या नीति होगी, ये पूछा गया। कार्ली फियोरेना जो एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन पार्टी में, उन्होंने तो सीधा युद्ध की तैयारी की बात की है रूस के खिलाफ और कहा है कि पुतिन से बात नहीं करेंगी। उसके जवाब में दूसरे उम्मीदवार रैंड पॉल ने कहा कि अगर रोनाल्ड रीगन ने यही नीति अपनाई होती रूस के साथ तो शीत युद्ध शायद कभी खत्म नहीं होता। तो जनता के लिए एक बड़ा मौका होता है इन उम्मीदवारों के राजनीतिक सोच, उनके विचारों को समझने
जी,
जानने
जी,
का।
मैं यही जानना चाह रहा हूं, श्रोताओं को ये भी बताते चलें कि इस डिबेट की अहमियत क्या है।
देखिए, इन डिबेट्स में कई बार जो राजा है वो रंक बन जाता है, जो रंक है वो राजा बन जाता है, बस एक छोटी या छोटी सी बड़ी गलती से। क्योंकि और दूसरी चीज इसकी अहमियत ये होती है कि एक साथ पूरा देश देख रहा होता है, तो एक बहुत बड़ी दर्शक, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग जो है उसको, उसके सामने एक्सपोजर मिलता है इन कैंडिडेट्स को। तीसरी बात, वोटरों को जैसा मैंने पहले कहा कि नई जानकारी मिलती है इन लोगों के बारे में। लेकिन एक और जो अहम बात होती है वो होती है विजुअल, क्योंकि ये टेलीविजन पर होता है तो लोग सुनने से ज्यादा ये भी देखते हैं किसका बर्ताव कैसा हो रहा है, कौन कैसा दिख रहा है। तो उम्मीदवार उन सब चीजों की तैयारी करके आते हैं। एक छोटा सा जो उदाहरण दे दूं, बिल क्लिंटन और जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश का जो डिबेट हुआ था उसमें बुश साहब ने 1992 में अपनी घड़ी की ओर नजर डाल दी तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो ये देख रहे थे कि ये कब खत्म होगा आखिर ये डिबेट, और उस चीज की बहुत चर्चा हुई और कहते हैं कि उसका उनको नुकसान भुगतना पड़ा। तो ये सब चीजें जो होती है विजुअल मीडियम का भी, की भी जो अहमियत होती है वो इस डिबेट में नजर आता है। और जैसा कि मैंने ये कहा कि कई लोगों की किस्मत इससे चमक जाती है एक छोटी सी गलती से, कोई छोटी सी अच्छी बात कहकर, और कई लोगों की बिगड़ जाती है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय, वॉशिंगटन से ये जानकारी दे रहे थे। और आने वाले दिनों में ही पता चलेगा किसकी किस्मत चमकती है और किसके सितारे गर्दिश में आते हैं। बहरहाल, नेपाल में कानून निर्माता नए संविधान के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। नया संविधान अगले रविवार से लागू होगा। 8 साल की राजनीतिक उथल पुथल के बाद मंजूर किए गए नए संविधान में संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। इन दोनों मुद्दों पर नेपाल में पिछले महीने हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिनमें 40 लोग मारे गए थे। नया संविधान नेपाल के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, यही समझने के लिए हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने बात की नेपाल में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सी के लाल से।
उपलब्धि तो एक किस्म से है ही, क्योंकि एक संविधान लिखना था और लग नहीं रहा था कि ये संविधान फिर से लिख पाएंगे, क्योंकि पहली संविधान सभा विफल हो गई थी। उसके साथ साथ एक मातम का माहौल है, क्योंकि नेपाल के जो मैदानी इलाका है तराई मधेश में, वहाँ आंदोलन जारी है। वहाँ एक कह रहे हैं लोग कि जो संविधान लिखा गया है इसमें उनकी आकांक्षाएं प्रतिबिंबित नहीं हुई है, उनका जो दावी है राज्य पर वो पूरा नहीं हुआ है। तकरीबन महीना भर से ज़्यादा से आम हड़ताल है तराई मधेश में, 43 लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी मातम का माहौल है। आधी जनसंख्या खुश है कि संविधान बना और आधी जनसंख्या मातम बना रही है कि ऐसा संविधान बना जो कि विभेद को संस्थागत करता है।
ऐसी स्थिति में इसको कैसे कहा जाएगा कि ये एक तरह से सर्वसम्मत संविधान है या पूरे नेपाल की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान है?
सर्वसम्मत है ये बात तो जो संविधान लागू किया है वो भी नहीं कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं संविधान की सारी धाराएं बहुमत के प्रावधान के अनुसार से पारित हुई है। और तराई मधेश के आधारित कुछ दलों के जो नेता थे तकरीबन 5 दर्जन ने बहिष्कार किया है संविधान निर्माण प्रक्रिया का। तो संविधान अगर जारी भी होता है तो इसकी स्वीकृति जो है जनता में उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा।
और बात की जाए अगर संविधान के जो उसकी विषय वस्तु है उसके कंटेंट की अगर बात की जाए तो किस तरह के संविधान का ये निर्माण हुआ है?
सकारात्मक पक्ष ये है कि नेपाल का जो गणतंत्र है वो संस्थागत हुआ है, दूसरा की संघीयता का जो प्रस्ताव किया गया था अंतरिम संविधान में उसको कुछ मूर्त रूप दिया गया है, हालांकि उस पर विवाद कायम है। और नकारात्मक बातें ऐसे हैं, जैसे कि कहा तो गया है कि नेपाल धर्म निरपेक्ष होगा, उसके साथ जोड़ दिया गया है कि नहीं सनातन धर्म का रक्षा करना कर्तव्य होगा राज्य का। तो परिभाषाएं इस तरह से बदल दी गई है कि शब्द को देखने से लगता है कि सब सही है, जैसे कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर ना हो करके भूगोल के आधार पर होगा, तो जो 4000 जनसंख्या का क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व और जो लाखों का क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व समान रूप से हो जाएगा। इसीलिए इसको हर ओर से स्वागत नहीं हो रहा है, विरोध के स्वर है, जो दलित है वो इसको स्वीकार करने के लिए इनकार कर रहे हैं, जनजाति इनकार कर रहे हैं, मधेशी इनकार कर रहे हैं, महिलाएं कह रही है कि नागरिकता का प्रावधान जो है उनके विरोध में है, तो विरोध का स्वर भी काफी मुखर है।
ये थे नेपाल से वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सी के लाल। रुख करते हैं भारत का। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर जारी हुए डाक टिकट बंद करने के फैसले पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने कहा है कि सिर्फ एक ही परिवार को ये सम्मान नहीं मिल सकता। वहीं कांग्रेस ने इस कदम को इतिहास का अपमान बताया है। मोदी सरकार अब नए डाक टिकट जारी करने वाली है जिन पर दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम मनोहर लोहिया की तस्वीरें होंगी। समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
डाक विभाग ने साल 2008 में विभिन्न क्षेत्रों की 9 हस्तियों पर डाक टिकटों की एक सीरीज शुरू की थी। इसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीआर अंबेडकर, सत्यजीत रे, होमी भाभा, जेआरडी टाटा और मदर टेरेसा की तस्वीरों वाले डाक टिकट थे। लेकिन एनडीए सरकार को महापुरुषों का ये वर्गीकरण पसंद नहीं आया, लिहाजा सरकार को डाक टिकटों के बारे में दोबारा फैसला करना पड़ा, बताया केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने।
जो फिलैटली एडवाइजरी कमेटी ने हमारी अगुवाई में फैसला किया वो क्या है, महात्मा गांधी भी होंगे डेफिनेटिव के रूप में, जवाहरलाल नेहरू भी होंगे, सरदार पटेल हैं, मौलाना आजाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, विवेकानंद हैं, महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, लोकमान्य तिलक हैं, मदर टेरेसा भी हैं।
रविशंकर प्रसाद का कहना था कि इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं जिनमें आजाद भारत के कुछ प्रमुख संगीतकार और साहित्यकार भी शामिल हैं, लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस फैसले पर सख्त एतराज जताया है। पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने इसे इतिहास का अपमान कहा है।
And the Department of Post to withdraw or stop the postage stamps in the definition 9 the builders of modern India.
आनंद शर्मा कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एनडीए सरकार के इस रुख की निंदा करती है। मोदी सरकार इस स्तर पर उतर सकती है कि वो देश के दो प्रधानमंत्रियों के योगदान की तौहीन करे, ये कोई सोच भी नहीं सकता। ये सरकार की संकुचित नीति को दर्शाता है, ये इतिहास की तौहीन है, आनंद शर्मा के शब्द। वहीं सरकार के इस कदम का बचाव करते हुए संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निर्धारित डाक टिकट श्रृंखला में अब तक एक ही परिवार पर जोर था जो कि सरकार को मंजूर नहीं है।
हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से मांगती है कि भारत को बनाने में जिसने भी सहयोग किया सबका सम्मान होना चाहिए और डाक टिकट उस सम्मान का एक परिचय है। हम महसूस करते हैं कि ये अधिकार सिर्फ एक परिवार का नहीं होना चाहिए। क्या कांग्रेस के लोग देश को सिर्फ एक चश्मे से देखना चाहते हैं क्या? हम ये नहीं देखना चाहते।
बताया ये भी जा रहा है कि इंदिरा गांधी की जगह डाक टिकटों पर योग की तस्वीर लगाई जाएगी, हालांकि इसका फैसला भी नहीं हुआ है। सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई ने दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन भी किए।
ये रिपोर्ट थी समीर आत्मज मिश्र की। रुख कर रहे हैं बिहार का, जहां विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 12 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार का कहना है कि प्रशासनिक चुनौतियों के अलावा काले धन की समस्या से निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। हमारे सहयोगी मनीष शांडिल ने अजय कुमार से इन्हीं मुद्दों पर बात की।
2005 के पहले चुनौतियों की अंबार थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आयोग ने ईवीएम का उपयोग करना शुरू कर दिया और पोलिंग स्टेशंस पर खासकर बिहार में सेंट्रल पुलिस फोर्सेस तैनात करने का प्रारंभ किया, तब से एक भयमुक्त वातावरण में वोटिंग होता है। हालांकि वोटिंग की प्रतिशत अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा कम जरूर है। ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो त्योहारों के बीच में हो रहा है, खासकर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एकदम साथ में है, तो हम लोगों ने इसलिए इसके लिए काफ़ी तैयारी की है ताकि कहीं पर भी कम्युनल सिचुएशन पैदा नहीं हो। रैपिड एक्शन फोर्स की भी 10 कंपनियां बिहार में तैनात की जा रही हैं।
चुनावों की तारीखों की घोषणा हुए लगभग एक सप्ताह गुजरा है और इसी दौरान कम से कम 4 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं, तो इस बार जो काला धन है वो कितनी बड़ी चुनौती है निष्पक्ष चुनाव करवाने की दिशा में?
बिहार में धनबल का प्रयोग बहुत कम रहा है, लेकिन अब की बार चूंकि इलेक्शन सब लोग कह रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि बहुत ही कांटे की लड़ाई है और आशंका बनी हुई है कि धनबल का प्रयोग हो सकता है, इसलिए हम लोग और ज्यादा सख्ती से इस पेश आ रहे हैं।
बूथ कैप्चरिंग की कोशिश अब नहीं होती है या ये अब करने नहीं दिया जाता है?
बूथ कैप्चरिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया, क्योंकि उसमें तब तो 5-6 लेयर पर कॉम्प्रोमाइज होने की आवश्यकता है। ईवीएम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, सिस्टम इज फुल प्रूफ, तो पोलिंग एजेंट्स को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जो भी पोलिंग पर्सनल या बाकी जो फोर्स रहता है सेंट्रल पुलिस फोर्स छोड़ के, वो सब रैंडमाइज रहता है उसमें, तो आपको पोलिंग ऑफिसर्स को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो इतना सारा चीज करना जो है ये संभव नहीं।
ये थे बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार। मुंबई में आज से 11 दिन तक चलने वाला गणेशोत्सव शुरू हो रहा है, जहां गणपति के लिए बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं जिनका लाखों करोड़ों का बीमा कराया जाता है। मुंबई से सुप्रिया सोगले की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला हिंदू पर्व गणेशोत्सव शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी इस पर्व की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हजारों भक्त, लाखों की मूर्ति और करोड़ों का चढ़ावा। बदलते वक्त के साथ ये पर्व बड़ा होता जा रहा है और साथ ही बड़ा होता जा रहा है इससे जुड़ा जोखिम। हर साल गणेश पंडालों में दुर्घटना, चोरी या कोई अप्रिय घटना घट सकने की संभावना होती है। ऐसे में भगवान गणेश का भी अब बीमा होने लगा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गणपति का भी होता है बीमा। पर क्यों, बता रहे हैं गणपति का बीमा कराने वाले बीमा सलाहकार रितेश कोचर।
गणपति बापा की मूर्ति की एक वैल्यूएशन होती है, तो अगर वो 1 करोड़, 2 करोड़, डिपेंडिंग वो कितने बड़े गणपति हैं, उन्होंने कितने अमाउंट के आभूषण पहने हुए हैं। किसी किसी पंडाल में सोने चांदी के उनके सिंहासन होते हैं, मूर्ति होती है, मालाएं होती हैं, कुछ उनपे जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो होता है, कि जो भी वैल्यूएशन होती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर्स उन्हें आके वैल्यू करते हैं और अकॉर्डिंगली गणपति पंडाल वाले कवर रहते हैं। इसकी रेंज कुछ भी 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक हो सकती है।
मुंबई में कई सारे गणपति मंडल है जो सार्वजनिक गणपति स्थापित करते हैं और इनका बीमा करवाना अब आम है। बीबीसी ने बात की मुंबई के सबसे मशहूर गणपति मंडल लालबाग के अध्यक्ष अशोक पवार से।
पिछले साल तो बीमा करीब करीब 40 करोड़ का था, इस साल 50 करोड़ का है। 14 लाख रुपए प्रीमियम भरा है हम लोगों ने बापा के मूर्ति का, और जो हमारे पैंडल्स है और जो बापा के गहने हैं और जो भाविक लोग आते हैं, हमारे वॉलंटियर्स है, सिक्योरिटी, उनका, उन सब लोगों का 51 करोड़ का हम लोगों ने बीमा निकाला है।
मुंबई के सबसे अमीर गणपति GBS गणपति ने बीमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ 237 करोड़ का बीमा करवाया है। कारण, गणपति बप्पा इस बार 70 किलो सोना और 470 किलो की चांदी से लदे हुए हैं। इस मंडल के अध्यक्ष RG भट्ट कहते हैं,
इस साल हमने 237 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है। सोने का जो गहनों का 21 करोड़ का इंश्योरेंस है, फायर है, रॉबरी डकैती कैश का है, पब्लिक लाइबिलिटी है, जो एक्सीडेंटल है, टेरर है, ये सभी हम लोग ने इसकी ले लेके 237 करोड़ का लिया हुआ।
इसके अलावा अंधेरी में मौजूद एक गणपति मंडल ने अपने आराध्य देव का 6 करोड़ का बीमा करवाया है। प्रीमियम की बात पर बीमा सलाहकार रितेश कहते हैं,
प्रीमियम तो ज्यादा नहीं होता। आमतौर पर ये हमारी सोच होती है कि करोड़ों का इंश्योरेंस हमने कराया है तो बहुत ज्यादा प्रीमियम होगा, बट प्रीमियम हजारों में ही होता है। तो अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको प्रीमियम लगभग कुछ 20-25 हजार के करीब आता है।
गणपति की रक्षा 11 दिन के लिए बीमा कंपनी के हाथ में होती है और अगर बिना किसी अप्रिय घटना के 11 दिन बीत जाए तो प्रीमियम प्रसाद के रूप में बीमा कंपनी के पास ही रह जाता है। सुप्रिया सोगले, BBC मुंबई।
और आइए अब जानते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या सुर्खियां हैं। दिलनवाज पाशा कई अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, आज के अखबारों में भी डेंगू की खबर ही प्रमुख है। खासकर दिल्ली से प्रकाशित अखबारों में जनसत्ता लिखता है, बुखार से आईसीयू में सरकार तो हिंदुस्तान ने बताया है डेंगू टेस्ट की फीस 600 रुपए थे। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 सालों में डेंगू से लड़ने का बजट 66% तक कम कर दिया गया। एक और खबर जो ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर, वो है ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। अगले 3 साल में 300 ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च होंगे 5200 करोड़ रुपए। तो ये खबर भी अलग अलग अखबारों में है। जिक्र करूंगा द इंडियन एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक राजस्थान के एक आईपीएस अधिकारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उन पर सरकार में हर स्तर से दबाव बनाया गया कि वो हिंदू दंगाइयों पर कार्रवाई ना करें और मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करें। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो इसका जवाब देगी इन आरोपों का। इंडियन एक्सप्रेस की ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि वो भारतीयों को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए जाने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि इससे देश में नस्लीय हिंसा होने का खतरा है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में कहा है। दैनिक भास्कर की एक खास रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक एक क्रिकेटर, जो महिला क्रिकेटर गूंगी और बैरी हैं, उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह बनाई है। श्रद्धा नाम है इनका।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज इन तमाम खबरों के लिए। और अब जानते हैं खेल की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। हॉकी इंडिया लीग के तीसरे सत्र के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। सबकी नजरें दिल्ली वेव राइडर फ्रेंचाइजी से रिलीज किए गए मिडफील्डर सरदार सिंह और ड्राइव फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह पर होंगी। वहीं विदेशी स्टार खिलाड़ियों में जेमी ड्वेर, निकोलस जारोबी, एंड्रयू हेवर्ड, किरेन गोवर्स और लुकास रे पर भी 6 फ्रेंचाइजी टीमें मोटी रकम खर्च कर सकती हैं। कुल 135 भारतीय और 137 विदेशी खिलाड़ी नीलामी प्रक्रिया से गुजरेंगे। नए नियमों के अनुसार एक फ्रेंचाइजी टीम 20 खिलाड़ी रख सकती है, जिसमें 12 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी होंगे। हालांकि विदेशी खिलाड़ियों में इस बार पाकिस्तान से कोई खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया है। इस पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा कहते हैं,
already had. We want the event to run successfully. I would love to have Pakistani players, but not with the kind of political situation they are creating.
मैं टूर्नामेंट के लिए कोई परेशानी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ये टूर्नामेंट कामयाब रहे। मैं व्यक्तिगत तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलते देखना चाहता हूं, लेकिन इससे टूर्नामेंट को नुकसान पहुंच सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खराब व्यवहार के बाद उनकी तरफ से माफी की पेशकश नहीं की गई है, इसलिए वो इस लीग में हिस्सा नहीं ले सकते।
इस बार लीग में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें हर मैदानी गोल को 2 गोल के रूप में गिना जाना शामिल है। इसके अलावा नीलामी पूल में भारत के 30 साल से अधिक आयु के खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। इस पर नरेंद्र बत्रा कहते हैं,
कोई एज लिमिट या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हॉकी इंडिया से नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही है कि हमें प्रिपेयर आज के लिए नहीं, आगे के लिए करना है। हॉकी इंडिया लीग का बेसिक पर्पस हमारे लिए है कि हम अपने लोगों को, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता प्लेयर्स को, अगर आप इंडिया टीम में नहीं खेल रहे हैं, यहाँ आप उनके साथ खेल रहे हो, उनके साथ ट्रेन कर रहे हो, वो कैसे उठते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, क्या खाते हैं, वो सब चीज़ें देख के आई थिंक वी हैव बीन एबल टू गेट अबाउट 8 प्लेयर्स आउट ऑफ हॉकी इंडिया लीग इनटू द इंडियन टीम।
हॉकी इंडिया लीग की गत विजेता भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की मालिकाना हक वाली रांची रेस टीम है।
इसके साथ ही वक्त हो चला है एक बार फिर विश्व समाचारों का दिलनवाज पाशा से।
सर्बिया से हंगरी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे प्रवासियों पर हंगरी की पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ी हैं। सर्बिया और संयुक्त राष्ट्र ने प्रवासियों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें इस्तेमाल करने के लिए हंगरी की तीखी आलोचना की है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस 14 वर्षीय मुस्लिम छात्र को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है, जिसे स्कूल में डिजिटल अलार्म घड़ी ले जाने पर बम लाने का शक होने की वजह से हिरासत में ले लिया गया था। बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि सीरिया के भीतर 20 लाख से अधिक बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं। चिली में आए 8.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद समूचे तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी दी गई है। भारत का कहना है कि दिल्ली के नज़दीक अपने घर में 2 नेपाली घरेलू नौकरानियों को बंधक बनाने और बलात्कार करने के आरोपों का सामना कर रहे वरिष्ठ सऊदी राजनयिक देश छोड़ गए हैं। मध्य पूर्व में तैनात शीर्ष अमरीकी कमांडर जनरल लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए अमरीका से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सिर्फ 4 या 5 सीरियाई विद्रोही लड़ाके ही फिलहाल लड़ रहे हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सैनिकों ने अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति आवास में नजरबंद कर दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 2016 में होने वाले चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदारी पेश करने वाले शीर्ष 11 उम्मीदवार एक टीवी बहस में हिस्सा ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे आगे माना जा रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत के पहले अंक में इतना ही। शाकिर आलम स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे, खबरें आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए पूरी टीम को अनुमति।